ओम शांति। हम सबके अपने चिर परिचित सूरज भाई का परिचय देना तो यूं कहें सूर्य को भी दीप दिखाने वाली बात हो जाती है। हमारे बाबा के अनन्य अनमोल ज्ञान की गहराई में जाकर आप सबके लिए मोती माणक लाने वाले, हम सबकी समस्याओं का समाधान देने वाले ज्ञानी योगी बाबा के लाल, तो आज हमारे बीच में आपका बहुत 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 स्वागत है। हम सबको इंतजार था, सूरज भाई की क्लास का था ना इंतजार, तो एक बार हाथ हिला के तो बताओ कितना इंतजार था। तो आज संगम योगी जीवन मुक्त स्थिति का श्रेष्ठ पुरुषार्थ, उस पर हमें प्रकाश देंगे आदरणीय भाई जी।
ओम शांति। जीवन मुक्त ऐसे तो सतयुग में हैं, और कब होते हैं सब जीवन मुक्त, और वो ये रहस्य, जब कोई भी आत्मा परम धाम से नीचे आती है तो आधा समय जीवन मुक्त ही रहती है। अब भी जो आ रहे हैं, मान लो उन्हें 50 साल रहना है तो 25 साल जीवन मुक्त रहेंगे। ये अधिकार बाबा सबको देते हैं, तो जीवन मुक्ति में अनुभव नहीं होंगे, क्योंकि वहां सुख ही सुख है, दुख तुलनात्मक है ही नहीं जरा भी। तो इतने सुखी हैं कि ये पता नहीं कि हम सुखी हैं। जैसे यहां किसी का जीवन बहुत अच्छा बीतता हो, उन्हें पता नहीं चलता कुछ झंझट भी है क्या दुनिया में। तो हमें जीवन मुक्त स्थिति बनानी है, पहले तो इच्छा, अपने से सभी पूछेंगे क्या दृढ़ इच्छा है कि हमारी स्थिति जीवन मुक्त बने। है किस किस से मुक्त? जीवन में मुक्त, जीवन से मुक्त नहीं, जीवन में मुक्त। किस किस से मुक्त? विकारों से मुक्त, विकर्मों से मुक्त, व्यर्थ से मुक्त, और सबका बीज है देहभान से मुक्त। और भी जो छोटी मोटी चीजें हैं, बुरे संस्कार, वो सब इनमें आ गए। सबसे मुक्त अवस्था जिसमें आत्मा बहुत सुखी रहे, क्योंकि संगम युग प्रत्यक्ष फल देने वाला है। ये पहले बाबा की मुरलियां चली हैं, और प्रत्यक्ष फल का अर्थ है बहुत गहरा आंतरिक सुख। खुशी भी थोड़ी बाहर की चीज होती है, सुख जो अतीन्द्रिय सुख है, जो बहुत गहन है, उसकी प्राप्ति हम सब करते हैं। सब अपने से पूछें, संगम युग पर आनंद आ रहा है या तो आगे जानते हैं आप बहुत कुछ है, या जीवन उलझनों में बीत रहा है, परेशान हैं या परम आनंद में हैं, टकराव में हैं या मुक्त अवस्था में हैं, ईश्वरीय आनंद में हैं या उलझनों में हैं, सब चेक करें। और किसी मनुष्य ने यदि स्वयं को उलझाया है, खुद उलझाया है या उलझने आई हैं, सोच के उत्तर देना। मनुष्य अपने को स्वयं उलझाता है या उलझने बहुत हैं? बहने पीछे वाली, स्वयं उलझाता है, विचार कर लो इस बात पे। अगर कोई उलझे हुए हैं तो उसके जिम्मेदार वे स्वयं हैं। उनसे बाहर निकलने के रास्ते बाबा ने बहुत अच्छे अच्छे बताए हुए हैं। यदि उनमें रहें, उनको फॉलो करें, तो उलझने जीवन में रहेगी नहीं। कलयुग की काली रात के प्रभाव से मुक्त प्रकाश में रहेंगे। इधर प्रकाश है हमारे पास, उधर कलयुग की काली घोर अंधेरी रात है। मैं तो देखता हूं, मुझे लोगों के अनुभवों से पता चलता है, आप सबको पता चलता होगा दुनिया में रहते हुए, संसार काम की अग्नि में जलता जा रहा है और ये काम की अग्नि सभ्यता को नष्ट कर देगी। अब इसे कोई नहीं बच पाएगा। ऐसे समय में जब विकराल विकारों का प्रकोप है, अपने को प्रकाश में रखना, अपने को चैन में रखना, अतिंद्रिय सुखों में रखना, ये मेहनत का विषय तो है, पर विधि बाबा ने सहज बता दी है। वो विधि हमें जाननी चाहिए। मैं उनका कुछ वर्णन करता हूं आपके सामने। विधि बिल्कुल सहज है, समस्याएं बहुत हैं, समस्याएं हैं, बढ़ती जा रही हैं। एक बहन आज ही मिल रही थी दिल्ली की, कहा मेरी सारी सखियां, वो टीचर है, अच्छी एजुकेटेड है, सारी सखियां डिप्रेशन में हैं। कहा जो भी आती है कि हमें डिप्रेशन हो रहा है, खुशी तो नष्ट होती जा रही है, ये अंदर अंदर धर्मराज की सजाएं प्रारंभ हैं डिप्रेशन के रूप में। तीन तरीके बाबा ने सुनाए हैं, जिनको बहुत सजाएं मिलेंगी, जिनके बहुत पाप कर्म हैं, तीन तरह से सजाएं मिलेंगी। मन के रोग, डिप्रेशन आदि, रात को नींद ना आना और भटकती आत्माओं का वार होना, ये भी बहुत बढ़ता जा रहा है दुनिया में। मैं तो बहुत पहले से, 2-3 साल से एक बात से सबको सावधान कर रहा हूं, आपने सुना होगा। 2020 तक मुझे ऐसा लगता है कि संसार के आधे लोग मानसिक रोगों के शिकार हो जाएंगे, रात को सोएंगे नहीं। बाबा को ऐसी महान आत्माएं चाहिए जो सबको सुलाकर फिर सोएं। आता है सुलाना? माताओं को आता है, अपने बच्चों को सुला के फिर सोती हैं। कैसे सो जाते हैं बच्चे? अभी रो रहे हैं, आपको उनको सुलाना है, क्या करती है माताएं? आप तो करती हैं ना, मैं थोड़ा ही करता हूं। प्यार जाता है उनको हाथ से। देखो प्यार कितनी बड़ी चीज है, हाथ से प्यार जाता है ना, और वो सोने लगते हैं। हम भी अपने चित्त में सभी आत्माओं के लिए निर्मल प्यार, आत्मिक प्यार भरेंगे, ये परम आवश्यक है, तब हमारे वाइब्रेशंस उन्हें पहुंचेंगे। माँ का बच्चे से बहुत प्यार है ना, बच्चे का माँ से तुरंत वाइब्रेशंस ग्रहण कर लेता है। तो सब आत्माएं हमारी हैं और हम कौन हैं? पूर्वज। इस फीलिंग को बहुत बढ़ाना है। मैं हर ग्रुप में जब मैं यहाँ क्लास लेता हूँ, एक बात कहता हूँ, इंदौर के है ना सभी, जालौर भी, अच्छा एक इधर एक इधर, क्या बाबा को ऐसे कुछ महान योगी मिलेंगे जो सबको सुलाकर सोए? मैं ये बात बहुत कही है क्योंकि मुझे लोग सुनाते हैं, नींद ना आने का कष्ट कितना भारी है जब सब सोए हों और वो जाग रहे हों, जब सवेरे योग का टाइम आए तब नींद आए, जब काम का समय हो तब सोएं, बहुत बड़ी सजा हो जाती है। ऐसा समय आ रहा है जब मेडिकल साइंस पूरी तरह हाथ उठा देगी, कुछ नहीं कर सकते हम, ऐसा बिल्कुल साफ दिखाई देगा, कुछ नहीं हो सकता। अब भी है डॉक्टरों के पास बहुत सारी बीमारियों का कोई इलाज नहीं है, क्योंकि वो कहीं और से शुरू हो रही हैं। आज भी एक बहन आई मेरी, एक घर में ही कोई दूसरी बहन है, उसका 2 साल का लड़का और शुगर का पेशेंट है, क्या करें। ये तो केस बहुत होते जा रहे हैं, क्योंकि जो शुगर वाले शुगर के साथ मर रहे हैं, वो जन्म भी शुगर के साथ ले रहे हैं। अब इसका इलाज किसी डॉक्टर के पास तो नहीं है, तो ऐसा समय आ जाएगा जब डॉक्टर्स कहेंगे हम कुछ नहीं कर सकते। कौन करेंगे तब? बाबा तो करेगा, पर कराएगा अपनी महान आत्माओं के द्वारा। देखो बाबा ने कुछ साल पहले, 10 साल पहले की बात होगी, ये बात कही थी सबको बहुत ज्यादा स्मृति दिलाने के लिए कि भक्त लोग दुखी होकर बाप को पुकारते हैं और बाप बच्चों को याद करते हैं। क्यों? इन्हें सकास दो। मैं आपको एक बहुत सुंदर बात सुनाता हूं। मैं ये बात आपको इसलिए सुना रहा हूं सब कि ढिलाई छोड़ दें। अब बिल्कुल ओपनली अगर बोलूं तो जैसे यज्ञ में कभी बैगरी पार्ट आया था, अब यज्ञ में यानी सभी ब्राह्मणों में सूक्ष्म परीक्षाओं का दौर चल रहा है। माया का फुल अटैक सूखा पड़ा हुआ है, मैं सिंपल भाषा में बोलता हूं, कईयों के जीवन में सूखा पड़ने लगा है। इसलिए अपनी गति को जरा तेज करना है, स्वयं को उलझनों से स्वयं बचाना है। ये बहुत सुंदर बात है जो हमें मोटिवेट करती है, प्रेरित करती है बहुत। हम लोग दिल्ली में गए थे, एक बहुत बड़ा साइकेट्रिक मन रोग, मन के रोगियों का हॉस्पिटल है वहाँ दिल्ली का, बहुत बड़ा, यमुना के उस पार, बहुत लंबा चौड़ा किलोमीटर में फैला हुआ है। वहाँ के डायरेक्टर से मिलना था, वो एंटी ब्रह्मा कुमारी था, तो वो तो फट से सीधा हो गया। ये बाबा का जादू देखा हमने उससे, वो हमसे बात ही नहीं करता था, हमको देखता ही नहीं था, हम उसके बड़े ऑफिस में बैठे थे। अचानक ठीक हुआ वो सब, तो ले गया हमें घुमाने, और सब तो देखे, बहुत सारे लोग थे वहाँ। एक बड़ा सा हॉल ऐसा, इससे थोड़ा सा छोटा, जिसमें वो पेशेंट रहे हुए थे जिनके घर वाले उन्हें कुछ याद नहीं करते, छोड़ गए फाइनली, जिनको ये पता नहीं है कि हम इस संसार में हैं भी या नहीं, हमारा कोई है भी या नहीं, बिल्कुल माइंड से रिटायर जिसे कहते हैं, बिल्कुल खत्म हो गया है उनकी ब्रेन की, मन की शक्तियां। तो हमने देखा कि जहां उनकी बेड थी, लाइन में बेड लगी हुई थी, तो उनके पीछे थोड़ी थोड़ी जगह थी, सबके पीछे हनुमान की मूर्ति, साईं बाबा की मूर्ति, दुर्गा की मूर्ति, काली की मूर्ति, इसके बाद श्री कृष्ण की मूर्ति ये रखी हुई थी। हमने उससे पूछा, डायरेक्टर हमें दिखा रहा था, और वो डायरेक्टर को बहुत प्यार करते हैं, डायरेक्टर भी उनकी अच्छी पालना करता है। तो मैंने उनसे पूछा कि ये सब पीछे जो मूर्तियां रखी हुई हैं, ये क्यों रखी हुई, आप लोगों ने रखी है क्या इनके लिए? ये नहीं, ये इन्होंने ही रखी है, मिल गई होंगी कहीं से। और कहा ये जब रोज सवेरे उठते हैं तो हाथ जोड़कर इनके सामने खड़े ही रहते हैं। अब उनको बुद्धि तो है नहीं, अब खड़े हैं तो खड़े ही हैं, घंटों हो गए हाथ जोड़े, ऐसी स्थिति होती है उनकी। कहा ये खड़े रहते हैं, और ये बात सुन के हम 8 थे वहां, 8 भाई बहने गए थे देखने, हम सभी इतने अंतर्मुखी हुए। हमने सोचा कि जो संसार भूल गए हैं, जिन्हें संसार ने भी ठुकरा के अलग कर दिया है, वो किन्हें नहीं भूले? कौन है वो? उनकी अभी भी अंतर मन में बुद्धि उनकी काम नहीं कर रही, पर अंदर में कोई फीलिंग है कि हमें कुछ करेंगे तो यही करेंगे। हम लोगों में बहुत जागृति आई, हम क्या कर रहे हैं? क्या हमें एहसास है अपने महान कर्तव्यों का? सब चिंतन करेंगे, और वो दिन आ रहे हैं जब सारा संसार प्यासी नजरों से हमारी ओर निहारेगा। हमें एहसास है, पता है कि इतने महान कर्तव्य हमारा इंतजार कर रहे हैं। क्या हम उसकी तैयारी कर रहे हैं? कौन कौन करेंगे आप में से ये महान कार्य? अच्छा, सब करेंगे? नहीं, सोच के हाथ उठाओ। कंडीशन है इसके पीछे, जो इष्ट देव देवी बन जाएंगे, जो अपने देवत्व को जागृत कर लेंगे, मानवीय संस्कारों को समाप्त कर लेंगे, देवत्व देव स्वरूप इष्ट देवी स्वरूप, उनके वाइब्रेशन से इन आत्माओं का कल्याण करेंगे। बहुत बड़े बड़े काम हमें करने हैं। सुसाइड करने वालों की संख्या तेजी से बढ़ती जा रही है दुनिया में। हर मास संसार में 1000 लोग सुसाइड करते हैं। ये तो डेटा आज हैं जो लोगों को प्राप्त हैं, और न जाने कितने करते होंगे चुपचाप। ये सब आत्माएं भटकती जा रही हैं। ये हमारा जो अंतरिक्ष है भटकती आत्माओं से तेजी से भरता चला जाएगा। उन सबको मुक्तिधाम भेजना वो हमारा कार्य होगा। इसलिए अपने महान कर्तव्यों की स्मृति में अभी से आ जाएं सब। ठीक है बात? बहुत अच्छी प्योरिटी, बंधनों से मुक्त। असली बंधन मन का बंधन है। स्थूल बंधनों को तोड़ा जा सकता है, मन के बंधनों को तोड़ने के लिए ज्ञान की आवश्यकता पड़ती है। तो सभी अंतर्मुखी होकर बहुत अच्छा चिंतन करेंगे। मैं आपको कुछ चिंतन लिखा देता हूं, उससे आप जीवन मुक्त रहेंगे। रोज, जो रोज नहीं कर सकते, वीक में एक बार एकांत अवश्य लें। इवनिंग का टाइम हो तो बहुत अच्छा। किसी को मॉर्निंग में मजा आता है चिंतन में? और चिंतन करेंगे, क्या संगम युग पर हम वो कर रहे हैं जो हमें कर लेना चाहिए? सभी विचार करेंगे, क्या संगम युग पर हम वो सब कर रहे हैं जो हमें कर लेना चाहिए? दूसरा चिंतन, और अच्छे से अच्छा हम क्या कर सकते हैं? जहां भी आप हैं, घरों में कामकाज ज्यादा, जो भी आपकी स्थिति परिस्थिति है, उनमें अच्छे से अच्छा और क्या किया जाए? बेस्ट पॉसिबल क्या है? सबके पास है पॉसिबिलिटीज हैं या नहीं? अगर मनुष्य टाइम बचाना चाहे तो वो 4 घंटे रोज बचा सकता है, अगर अपने कार्यों को ठीक से मैनेज करें। नहीं तो छोटे काम में सवेर से दोपहर हो गई, दोपहर से शाम हो गई। सबसे ज्यादा शक्तियां कहां जाती हैं मनुष्य के? व्यर्थ में। मुझे याद है मधुबन में, बहुत साल पहले की बात है, शायद 40 साल हो गए हों, एक मास के मौन का प्रोग्राम बना दिया। मुरली चली, दादी की विशेषता थी मुरली में जो आया है करें भाई सभी। अगर हलवे का जिक्र आ गया तो लाओ हलवा खिलाओ सबको गरम गरम। 36 प्रकार के भोजन की बात बाबा ने कह दी तो बनाओ भाई जल्दी कल ही। तो मौन की बात आ गई। उन दिनों यज्ञ में मौन बहुत चलता था, दीदी मनमोहिनी होती थी। एक मास का मौन डिक्लेयर हुआ। पहला दिन मंडे, सब ने तय किया कि भोजन दो टाइम खाएंगे केवल। मंडे का दिन सोमवार, मधुबन ऐसा हो गया मानो परम धाम। जो कभी चुप नहीं रहते थे वो सब चुप थे। कईयों को चुप रहना सबसे भारी काम है ना, वो सब चुप थे। दूसरे दिन सुख समतन रह गया, थोड़ा नीचे आ गए। तीसरे दिन और नीचे आए। चौथे दिन कई परेशान हो गए, क्या है हमसे नहीं रहा जाता है। पांच दिन तक चलाया, पांच दिन के बाद छोड़ देना पड़ा। अनुभव क्या रहे लोगों के, कि वही सेवाएं जो रोज चलती थी इन पांच दिनों में भी चली, लेकिन सभी लोग फ्री हो गए, काम ही नहीं था। तब पता चला कि मनुष्य बिजी है व्यर्थ में, बहुत सूक्ष्म गति है। मन की शक्तियों को यदि कोई एकाग्र कर ले तो वो दो घंटे का काम आधे घंटे में कर सकते हैं, लेकिन मन की शक्तियां व्यर्थ में बिखरती रहती हैं। इसे छोटे छोटे काम में गड़बड़ होती है, उलझन होती है, खेल बिगड़ता रहता है। तो समय निकालेंगे सभी और चिंतन करेंगे क्या अच्छे से अच्छा करें। बाबा से बात करेंगे और अपने से बात करेंगे, बाबा हमें सब कुछ देने आया है। मुझे बाबा का ये महावाक्य बहुत प्रिय लगता है, सुनते रहते हैं, ये आता रहता है मुरलियों में। बाबा बैठ कर, सामने बैठ कर कहता है, बच्चे मेरे से जो चाहे ले लो। इसे सुंदर बात पूरे कल्प में कभी नहीं होगी। भक्ति में मांगते फिरेंगे, हे प्रभु ये दो ये दो, पता भी नहीं चलेगा देता भी है या नहीं, सुनता भी है या नहीं। अब वो सामने बैठ कर कहता है जो चाहे, बोलो जरा क्या इच्छा है आप सबकी, बात करें अपने से। बाबा ने तो कह दिया, मैं तुम्हें अपना सब कुछ देकर खाली होकर वतन में जाकर विश्राम करता हूं। खाली कौन करेंगे उसे, और खाली किस में करेंगे, ये सारे बाबा के खजाने हमारे पास किस में आएंगे, बुद्धि में। बुद्धि पात्र है, धारणा शक्ति है। शक्ति धारण करना, प्योरिटी धारण करना, गुण धारण करना, वरदान धारण करना, ये सब बुद्धि का काम है। बुद्धि को कैसा बनाएंगे, कैसा पात्र, स्वच्छ। बस इस बात पे यदि आप बहुत ध्यान दे दें तो जीवन बहुत सुखी हो जाए। बुद्धि में बहुतों ने गंदगी बहुत भर ली है, डस्टबिन बना दिया है अपनी बुद्धि को। जिस बुद्धि में भगवान को बैठाना है उसमें क्या भर दिया माल। अब ऐसे जगह पर भगवान बैठेगा, कहेगा पहले ही भरा हुआ है, बदबू आती है, मैं क्यों आऊं तुम्हारे पास। देख लें हमने अपनी बुद्धि में क्या क्या भरा है। दूसरों के लिए वैर भाव चेक करें और उसको निकाल दें। घृणा भाव, बदले का भाव, ईर्ष्या द्वेष का भाव, मनोविकार तो भरे हुए हैं लेकिन ये सब भी तो नहीं भर लिया है। हटाएं इसको, बहुत सुंदर समय है अपने में मग्न होने का और दूसरों के लिए साक्षी भाव धारण करने का। ध्यान से सुन लेंगे, अंतिम अवसर चल रहा है। जो अब भी चूक गए वो गए। ये मौका इसके बाद पूरे कल्प में कभी नहीं मिलेगा। मुझे तो साफ दिख रहा है 2000 से खेल कुछ और हो जाएगा, खेल बदलेगा, विनाश नहीं हो जाएगा। विनाश से पहले बहुत कुछ और होना है। आप सोचे मैं विनाश की बात कर रहा हूं, विनाश की नहीं, कुछ और खेल। इस सृष्टि के खेल की रूपरेखाएं बड़ी सूक्ष्म होती जाएंगी, सबके हिसाब किताब चुक तू करने होंगे बाबा को। वो खेल चालू होगा जो अति कष्टकारी होगा, उसमें हमें अपने को संभालना, इसलिए अपने में मगन होना और साक्षी भाव धारण करना ये परम आवश्यक है। तो रोज सभी बहुत अच्छा चिंतन करेंगे एकांत में। मैंने कहा रोज नहीं, माताएं रोज कर सकती हैं जो घरों में हैं, टाइम निकाल सकती हैं, अपने को खुद प्रेरित करेंगी। ये चिंतन आवश्यक है, अपने को देखना भी है। संगम युग पर क्या हम वो तो नहीं कर रहे जो हमें करना ही नहीं चाहिए, आए थे क्या करने, और कई लोग करने कुछ और लगे, आए थे अपने को देखने, अपने को देखना भूल गए, दूसरों को देखना आरंभ कर दिया। चेंज करेंगे अपने को, करेंगे बोलने के तरीके में चेंज, किसी ऐसे संस्कार में चेंज जो हमें और दूसरों को कष्ट देता है, निगेटिव चिंतन में चेंज। बहुत बड़ी समस्या बनती जा रही युवा वर्ग में, खास निगेटिव चिंतन जो उनके भविष्य के लिए बहुत खतरनाक सिद्ध होगा। संसार में किसी को भी ये पता नहीं है, कहीं ऐसी एजुकेशन ही नहीं है, कोई नहीं है कि जो तुम सोच रहे हो सारा दिन व्यर्थ निगेटिव परेशानी का, इसका उसका, उससे तुम्हारी इनर पावर्स नष्ट होती जा रही है और इसका परिणाम बहुत ही बुरा होने वाला है। ये किसी को पता नहीं है हमारी एजुकेशन में। इससे बीमारियां बढ़ती हैं, इससे समस्याएं पैदा होती हैं। क्या प्लान बनाएंगे पुरुषार्थ का? पुरुषार्थ की प्लानिंग करके जाना है यहां से आपको। जैसे आए थे वैसे तो आप नहीं जाएंगे, ये तो साफ है, लेकिन आगे का जीवन वैसा न बीते जैसा पीछे का बीता है। 2 साल पीछे के जैसे बीते हैं, अगले 2 साल उससे 10 गुना अच्छा बीते, 10 गुने। और ये सब हमारे हाथ में है। एक बात बाबा की और याद दिला दूं, आप सदा याद रखना, अब है बाबा साथी और विनाश काल में हो जाएगा साक्षी। कोई कहे बाबा मदद करे, मदद तो मिलेगी, पर उन्हें मिलेगी जो पात्र होंगे। मदद अब कर रहा है, साथी है वो, तब वो खेल को साक्षी होकर देखेगा कौन क्या कर रहा है। बाबा ने इसका बिल्कुल सीधा उत्तर दिया हुआ है कि परीक्षा के समय टीचर को मदद नहीं करनी होती, नियम नहीं है। टीचर का काम है अच्छी तैयारी करा देना, पढ़ा देना, सब कुछ दे देना, फिर बच्चे जो लिखें, जो उत्तर दें, उसके आधार पे नंबर मिलते हैं। तो सभी प्लान बनाएंगे। क्या प्लान? हम एक छोटा सा प्लान आपको देना चाहता हूं जो आप अपने जीवन में अपना सकें। पहले माताओं के लिए छोटा सा प्लान, अगर मातृशक्ति ये छोटा सा काम कर ले तो उनके जीवन में कोई समस्या न रहे। एक छोटा सा काम है, पहले नहीं पूछूंगा करेंगे, पर छोटा सा तो हो सकता है ना। भोजन बनाते हुए पहले तो बाबा का आह्वान करें अपने किचन में, और फिर मैं परम पवित्र आत्मा हूं ये याद करते हुए भोजन बनाओ। 100 बार याद हो जाए कम से कम, देखो इसका जादू। जादुई काम होगा भोजन से, आपके व्यर्थ संकल्प खत्म हो जाएंगे, ब्रेन को प्योर एनर्जी जाएगी, घर में आपके पवित्र वाइब्रेशंस फैलेंगे, सब बच्चे परिवार बहुत अच्छे रहेंगे। हो सकता है माताओं से काम, अब देख लेना। कहाँ गई दीदी हमारी, शकुंतला दीदी? शकुंतला नाम मैंने कुछ और बोल है? सब टीचर बैठी है ना, माताओं को, सुमित्रा माताओं को जरा ध्यान दिलाना। टीचर बहने अगर रोज उनसे पूछें तो धीरे धीरे माताओं को प्रैक्टिस पड़े, क्योंकि माताओं की गड़बड़ ये है कि बातें किए बिना रहा नहीं जाता। खाना बनाती हैं या नहीं बेबी? कभी नहीं बनाती। चलो जब बनाओ तभी अभ्यास कर लेना, ठीक है? जो वालों के लिए भी आते हैं, कोशिश करना रोज सवेरे 4 बजे अवश्य उठ जाए। नहीं सुनने में आ रहा, क्या कह रहे वे? जल्दी बनाएं। अगर आप ये संकल्प करते बनाएंगे ना, तो अगर आधा घंटा लगता है, 20 मिनट में बन जाएगा। करके देखो प्रयोग, और जल्दी हो जाएगा। जब मनुष्य सोचता नहीं हम जल्दी करूं जल्दी करूं जल्दी करूं, 10 मिनट की बजाय 15 लगेंगे। और आराम से अभ्यास करते हुए करो, 10 मिनट का काम 7-8 मिनट में ही पूरा हो जाएगा। प्रयोग करके देखो आप। सवेरे उठने का सभी प्लान अवश्य बनाएं। मैं ये नहीं कहूंगा आप 2 बजे उठ जाओ, 4 बजे तक अवश्य उठ जाएं। अपनी दिनचर्या को रात को ऐसा सेट करें, सोएं ठीक टाइम पे, 4 बजे उठ जाएं। क्योंकि सवेरे योग तो हम दिन में भी लगाएंगे, शाम को भी लगाएंगे, तो बाबा ने कहा निरंतर मुझे याद करो, लेकिन सवेरे के समय बाबा अपने बच्चों के लिए होता है, वो देता है बहुत कुछ, हमारी सुनता है, हमें शक्तियां भी देगा, वरदान भी देगा, बहुत खुशी होगी और एक अनुपम सुख, अतिंद्रिय सुख आभास होगा, और इसका इफेक्ट पूरी दिनचर्या पर होगा। कईयों को समस्या होती है कि थोड़ी देर से सोए 4 बजे उठेंगे तो दिन में तकलीफ होती है। बिल्कुल ठीक बात है, तकलीफ होती है, आपको नींद आएगी, ऑफिस में आप पढ़ाते हैं वहां भारीपन रहेगा, आप आधा पौना घंटा रेस्ट कर सकते हैं बाद में अपने काम पर जाने से पहले, कैसे भी मैनेज कर लें। सवेरे के समय को महत्व दें, अपने को बहुत टाइट भी करने की जरूरत नहीं, लेकिन इसको महत्व देकर इस समय का पूरा फायदा उठाएं। एक बार अच्छी तरह रोज प्रभु मिलन हो जाए, उसका सुख मिल जाए आत्मा को, भगवान से मिले अच्छी तरह आज 5-10 मिनट, उसकी दृष्टि मिली, सिर पे उसका हाथ आ गया, ये बहुत अच्छा अनुभव रोज होना चाहिए। किसी कारण मिस हो जाए शाम को, 2 अमृत वेले हैं हमारे लिए, मॉर्निंग और इवनिंग, 6:30 के बाद का टाइम, सूर्य ढलता है, प्रकृति में पुनः शांति के वाइब्रेशंस होते हैं, उस टाइम भी योग में बहुत आनंद आएगा। 3 बार हम बाबा को नमस्ते करते हैं उठते ही। कौन कौन करते हैं? सब कर लेते हैं, कोई कोई छूटते हैं। चलो जब उठा करो, लेट उठो तो भी कर लिया करो गुड मॉर्निंग, और फिर फील करें हमने बाबा को जो गुड मॉर्निंग की तो बाप दादा का वरदानी हाथ मेरे सिर पर आ गया। बिल्कुल प्रैक्टिकल फीलिंग, सूक्ष्म लोक में। फिर मुरली के समय करते हैं ना सभी, याद प्यार नमस्ते, फिर फील करें मैं सूक्ष्म लोक में हूं, और जैसे ही मैंने बाबा को नमस्ते किया बाबा ने हजार भुजाएं सिर के ऊपर फैला दी और याद दिला दिया, रोज रोज एक बार याद दिला दिया, मैं हजार भुजाओं सहित तुम्हारे साथ हूं। बहुत फायदेमंद चीज होगी ये। तीसरा, रात को गुड नाइट करते हैं, गुड नाइट या थके थकाए बातचीत करते टीवी देखते सो गए, टीवी आधा घंटे पहले देखना बंद कर देनी है, आधा घंटा तैयारी करनी अपनी, पुराना सब डिलीट, अगले दिन की तैयारी, क्योंकि जो हमारा लास्ट क्लोजिंग होगी ना दिन की, वही ओपनिंग होगी सवेरे की। क्लोजिंग सुंदर करनी है, बाबा से बात करते हुए हो सके तो कुछ पढ़ लो, अच्छी अव्यक्त मुरली, कोई अच्छा गीत बजा के योग कर लें, पांच स्वरूपों का अभ्यास कर लें। रात को जब गुड नाइट करें फिर सूक्ष्म लोक में और अनुभव करेंगे, बाबा ने हमें गले से लगा लिया। तीन बार ये प्रत्यक्ष मिलन होना ही चाहिए। पसंद है? नेक्स्ट बात, जब भी आप अपने कार्यों पे जाते हैं घर से, एक बात और जोड़ दूं, मान लो आप 10 बजे अपने 9 बजे अपने कार्यों के लिए घर से निकलते हैं, लगभग 9 बजे निकलते होंगे ना सभी, कोई 8 बजे भी निकलते होंगे, तो उठने से और तब तक के पूरे टाइम को यूज करेंगे। कई लोग क्या करते हैं, 4 से 4:45 का योग हो गया, बस ही पूरा हो गया काम, हो गया ना बस, अब तो पूरा हो गया। ये नहीं, 4 उठे तो 8 बजे तक सुंदर अभ्यास चलते रहने चाहिए। आपके पास कई अच्छे अभ्यास होने चाहिए जो आप कंटिन्यू करो। मैं कुछ बता देता हूं, 5 स्वरूपों का अभ्यास, उसमें कई अभ्यास आ गए, हमारे स्वमान भी आ गए बहुत अच्छे, फरिश्ता स्वरूप भी आ गया, पूज्य स्वरूप भी, भविष्य का नशा भी। मैं जब जब मधुबन में आता हूँ, रोज ही आता रहता हूँ, कभी 2-3 दिन के बाद आता हूँ, तो मुझे बाबा की एक बात अवश्य याद आती है, ब्रह्मा बाबा की, कि बाबा को आपने देखा होगा हिस्ट्री हॉल में एक ट्रांसलाइट का चित्र है अभी भी, उसको देखो 50 साल से भी ज्यादा, 51 साल हो गए, 52 हो गए होंगे बने। जब वो बन के आया तो बाबा को बहुत नशा होता था, मैं ये बनूंगा जाकर। हमें भी अपने भविष्य का नशा होना चाहिए, ये बात बहुतों से मिस होती जा रही है। इसलिए 5 स्वरूपों का अभ्यास बहुत अच्छा अनुभव कराएगा, उसमें भविष्य का रूप भी आ गया, पूज्य स्वरूप की स्मृति भी आ गई जो बहुत जरूरी है, आत्मिक स्वरूप भी आ गया। मैं लाइट हाउस, माइट हाउस फरिश्ता हूं और मेरे अंग अंग से रंग बिरंगी किरणें फैल रही हैं। सवेरे के समय नहाते धोते जो बीच का टाइम है 5 से 6 या 5 से 7, उसमें ये अभ्यास चालू रखें। मैं लाइट हाउस, माइट हाउस फरिश्ता हूं। एक बहुत सुंदर अनुभव सब करेंगे और सभी इसको अपनी आदत बनाएंगे, सारे दिन में 5 बार बाप दादा का आह्वान बुलाएंगे, बाप दादा को, और फील करेंगे आ गए उतर कर हमारे सामने। एक है हम सूक्ष्म लोक में जाएं उनके पास, दूसरा उन्हें बुला ले आ गए नीचे, उनकी उपस्थिति उनको विजुअलाइज करें, सामने देखें, सामने खड़े हैं, बहुत डिवाइन, बहुत दिव्य, बहुत तेजस्वी, दृष्टि लें, बातें करें। अपने घरों में बुलाओ, दुकान में बुलाओ, जहां भी समस्या हो जाए बाबा को बुला लो, ऐसी आदत पड़ जाए तो विनाश काल में ये वरदान बन जाएगी। बहुत अच्छा अनुभव इससे होगा। एक दो अभ्यास और लिख लें, मैं आपको एक बाबा की बहुत सुंदर बात याद दिला दूं पहले। योग क्यों नहीं लगता, बाबा से मिलन क्यों नहीं होता। बाबा ने उत्तर दिया बहुत अच्छा, व्यक्त मुंडली में आ गया है, क्योंकि ड्रेस नहीं बदलते। मैली कुचैली ड्रेस पहन के भगवान से मिलने जाते हैं। दो ड्रेस हैं हमारी, ड्रेस बदलने हमारे दो स्वरूप हैं, आत्मिक स्वरूप फरिश्ता स्वरूप, इनका बहुत अभ्यास करना चाहिए। तो बाबा का मिलन बहुत सहज बहुत अच्छा होगा, व्यर्थ संकल्प शांत हो जाएंगे। अपने सभी संकल्पों को अपने कंट्रोल में लेने के लिए, सभी संकल्पों को शांत करने के लिए ये परम आवश्यक है कि हम अच्छे संकल्प क्रिएट करें। ये मिसिंग हो रही है बहुत ब्राह्मणों से, ये तो कहा जा रहा है व्यर्थ बहुत चलता है, व्यर्थ बहुत चलता है। पर प्रैक्टिस ये नहीं है कि व्यर्थ को रोक दो, प्रैक्टिस ये है कि श्रेष्ठ संकल्प क्रिएट करो अपने मन में, और वो श्रेष्ठ संकल्प और कुछ ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं, स्वमान के संकल्प, बहुत अच्छा अनुभव रहेगा। तो दो अभ्यास और लिखें आप जो बहुत पावरफुल हैं योग के, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान, और सर्वशक्तिवान शिव बाबा सिर के ऊपर छत्र छाया है। इस संकल्प को दोहरा भी सकते हैं आप, संकल्प को दोहराने से यही फायदा होता है कि व्यर्थ शांत होने लगेगा, दिद्रुत की फीलिंग होने लगेगी। दूसरा अभ्यास, मैं मास्टर ज्ञान सूर्य हूं, और ज्ञान सूर्य शिव बाबा आंखों के सामने है। सभी को स्वान की बहुत अच्छी प्रैक्टिसेज करनी है। मैं आपको एक सिंपल विधि बता रहा हूं, आप अपने पास 10 बारह अच्छे स्वमान नोट कर लेना। जो बहुत पावरफुल हैं, स्वमान से हमारी स्थिति श्रेष्ठ बनती है, और स्थिति श्रेष्ठ होने से परिस्थितियां बदल जाती हैं, ये काम ऑटोमेटिक होता है। स्वमान, बाबा के ये शब्द बहुत अच्छे हैं, जितनी ऊंची नजर से मैं तुम्हें देखता हूं उतनी ही ऊंची नजर से तुम भी खुद को देखो। अब सोच लो, ऊपर बैठकर बाप दादा हमारी सभा को देख रहे हैं, अभी क्या सोचते होंगे, कौन बैठे हैं, ये कौन बैठे हैं, वाह पहले इतना बड़ा नशा, इतने विश्व महाराजन, ये संसार की महान आत्माएं बैठी हैं, ये वही बैठे हैं जिनकी मंदिरों में पूजा हो रही है, जिनके सहारे दो युग संसार चलता आया है, सहारे पे चले हैं ना इस देव देवियों के, ये वही हैं, बोलो कौन, जिन्होंने कल पहले माया को जीता था, दिखता है वो ऊपर से, ये वही हैं जिन्हें मैं खोया हुआ स्वराज दिलाने आया हूं, ये वही हैं जिन्होंने जन्म जन्म मुझे बहुत प्यार किया है, ये वही हैं जो संसार के विघ्नों को हरने वाले विघ्न विनाशक हैं, ये वही हैं जो इस संसार के लिए वरदान हैं, पवित्रता की देवियां हैं। देखता होगा या नहीं, हम भी ऐसे ही अपने को देखा करें। तो आप एक 10-12-15 स्वमान नोट कर लेना और फिर कैसे अभ्यास करना, एक 15 मिनट अपने को देना, कुछ दिन रोज कर लो, जरा देखो आपको 10 मिनट में ही कितना नशा चढ़ेगा। आपने पहला स्वमान लिख लिया, मैं एक महान आत्मा हूं। अभी इस एक संकल्प को आपको अपने अंदर ले जाना है, अंतर मन इसे स्वीकार कर ले, हमारा आंतरिक विवेक इसे मान ले कि यही सच है कि तुम महान हो। मानता नहीं है, रिजेक्ट कर देता है, अंदर ही अंदर रिजेक्शन होता है, हमें पता नहीं चलता कब रिजेक्ट कर दिया उसने। तुम महान कहां, अंदर है छोड़ो महान कहां। जैसे मैं एक हंसी की बात सुनाया करता हूँ, बड़ी गुह्य बात है, बाबा की मुरली में आता है, कम से कम 8 घंटा मुझे रोज याद करो। पीछे बहुत अच्छे महावाक्य, 8 घंटे योग की मदद चाहिए मुझे, जो 8 घंटा योग करेंगे वो पवित्रता शांति की किरणें फैलाते हैं संसार में। सुनकर आपको क्या होता है, देगा कोई उत्तर, अंदर में ये हो जाता है, ये अपने से नहीं होगा। बहुत कम आत्माएं सोचती हैं, बहुत कम, लाखों में से 2-4 कि हम करेंगे। भगवान कह रहा है हमें करना है, हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा। तो जो रिजेक्ट करने का संस्कार है, इसे एक्सेप्ट करने के संस्कार में बदलें। तो मैं एक महान आत्मा, दोबारा इसको पढ़ना ध्यान से, ये सच है कि मैं देव कुल की महान आत्मा हूं। तीसरी बार फिर पढ़ना, स्वयं भगवान ने कहा है तुम महान हो, मैं महान हूं। तीन तीन बार एक एक स्वमान पे चिंतन करना, अंदर जाने देना उसको, बहुत सारी सोई हुई शक्तियां जागृत हो जाएंगी, विजय की शक्ति काम करने लगेगी। पीछे बाबा ने एक बहुत सुंदर मैसेज दिया था मार्च में, वो कहीं सेंटरों में नहीं पहुंचा है, वो केवल ज्ञान सरोवर में आया था, विदेशियों का सीजन था, जा रहे थे वो लोग। 3 बातें कही, 2 तो सबके काम की हैं और 3री कुछ आत्माओं के काम की है। माया के युद्ध में याद रखो मैं विजय रतन हूं, सहज विजय होगी। कर्म क्षेत्र पर बार बार याद करो सफलता मूर्त हूं, सफलता प्राप्त होगी। कोई भी काम शुरू करने जा रहे, जरा धैर्यवत 0.5 मिनट बाबा का आह्वान करो, याद करो सफलता मूर्त हूं, सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, सहज सफलता होगी। और 3री बात कही थी, अब वरदानी रूप से सेवा प्रारंभ करो। ये बहुत गुह्य बात है, इसको कोई कोई कर सकते हैं, तो सभी स्वमान की रोज अच्छी प्रैक्टिस करेंगे। जिनको बहुत अच्छा पुरुषार्थ करना है उन्हें एकांत तो लेना ही चाहिए। ठीक है, बड़े शहरों में आपको वैसा एकांत तो नहीं मिलता जैसा यहाँ हम लोगों को मिलता है, लेकिन फिर भी अपने घर में भी एकांत थोड़ा सा लिया जाए, जहां आप अकेले हों, अच्छा चिंतन करें। अव्यक्त मुरलियों में ज्ञान का भंडार है, चारों युगों में जो हमारे पास ज्ञान रहा हो उस सबको इकट्ठा करो तो भी अव्यक्त मुरलियों के आगे छोटा है। साकार मुरलियों में फिलोसोफी दी बाबा ने, हमें सब कुछ याद दिलाया, और अव्यक्त में संपूर्ण बनने का मार्ग दिखाया, हमारी शक्तियों को जगाया, हमारी प्योरिटी को जगाया, बड़ी वियता है उनमें, उनकी स्टडी भी करें। रोज 10-15 मिनट भी एक अव्यक्त मुरली को जरा ध्यान से पढ़ लिया करें, उसे ज्ञान का बल रहेगा, व्यर्थ समाप्त रहेगा। मैंने थोड़ी थोड़ी बातें बताई आपको, एसरीडी होने के लिए बहुत सारी प्रैक्टिस हो सकती हैं, पर मैं दो प्रैक्टिस आपको बता रहा हूं, क्योंकि प्रैक्टिस हमें चेंज करती रहनी पड़ेगी, नहीं तो एक ही प्रैक्टिस सदा आनंद नहीं देती। इस संडे से पहले संडे को मुरली थी देहभान का त्याग, उसमें बहुत अच्छी बात थी, आपको जस्ट अंडरलाइन करा देना चाहता हूं। हम सब कह देते हैं बाबा ये देह तेरा, परंतु आंखें मेरी, देह तेरा पर कान मेरे, जीभ भी मेरी। तो कर्मेंद्रियों के रसों में आत्मा लिप्त रहती है। अब जब तन तेरा हो गया तो आंख तन से अलग थोड़ा ही है, अब उसकी आज्ञा के बिना इन आंख से हम कुछ नहीं देख सकते, कान उसकी आज्ञा के विपरीत इनसे नहीं सुन सकते। अगर ये थोड़ी सी प्रैक्टिस करें तो अनेक व्यर्थ पूरे हो जाएं। कई माताएं मेरे पास आती हैं, भाई जी बहुत परेशान हूं, मैं उन्हें एक ही मंत्र देता हूं। चाहिए माताओं को मंत्र? कान में रुई डाल लो। बहुत सुनती हैं, इसकी उसकी पड़ोसियों की संबंधी सब माल इधर आ जाता है। अब वो परेशान नहीं करेगा तो क्या करेगा? गंदगी दूसरों की रख ली हमने अपने घर में थैली भर के, बदबू फैलेगी ना। तो सभी एक सुंदर प्लान करेंगे, क्या देह हम बाबा को दे रहे हैं, विजन बनाना, सूक्ष्म लोक में देह बाबा को दे रहे हैं लो, और बच गए हम निराकार आत्मा। कुछ क्षणों की ये गुड फीलिंग बहुत अच्छा अनुभव देगी, योग से पहले ये कर लेंगे, देह बाबा को अर्पित, बच गई मैं आत्मा। कभी हम ये प्रैक्टिस करेंगे शरीरी होने की, मैं आत्मा परम धाम से इस तन में आई हूं, और फिर ये छोड़कर मुझे वापिस जाना है। कभी योग में प्रैक्टिस करेंगे मैं आत्मा परम धाम में बाबा के पास हूं, तो कभी सूक्ष्म वतन में बाप दादा के सामने हूं। एक बहुत अच्छी प्रैक्टिस, आप कुछ दिन इसका आनंद लेना, फिर छोड़ छोड़ के करना, अपने 84 जन्मों की एक माला बना देना। देखो जैसे इधर से बना दी हमने, पहला जन्म, दूसरा, तीसरा, 8, 12, 21, 42, हमारे 84 शरीर खड़े हैं, 83, और मैं आत्मा अब यहां से निकलकर यात्रा करती, चमकती बिंदु ज्योति यात्रा पे अब जा रही है अपने पहले शरीर में, बैठ गई भ्रकुटि में, देव स्वरूप में। चिंतन कर लेना थोड़ा, यहां मैं कैसा हूं, कैसी हूं, उसे छोड़कर दूसरे में, उसे छोड़कर तीसरे में, 8 पूरे किए, 12 द्वापुर में आ गए, आत्मा को यात्रा कराएंगे। कभी छोटा शरीर, कभी बड़ा, कभी नर, कभी नारी, पार करते करते वापिस यहां। जैसे आत्मा धागे की तरह इन मनकों से गुजर के आ गई है, तो फील होने लगेगा मैं अलग हूं इससे, क्योंकि बहुत जरूरी है कि हम देह से अलग हों। इसमें ही अतिंद्रिय सुख भासता है, यही जीवन मुक्ति स्थिति का आधार बनता है। बस इतना ही सूत्र है, देह के बंधन से जितना हम मुक्त होते जाएंगे, हर चीज से मुक्त जीवन मुक्त होते जाएंगे। ये देह ही हमें बांध रहा है, और जिन्होंने इस देह से अलग होने का अभ्यास नहीं किया, उन्हें अंतिम काल में कठिनाई होगी, मुरलियों में रोज आता है, ऐसी प्रैक्टिस करो, अंत में कुछ भी याद ना आए सिवाय, और तीन चार दिन पहले तो बहुत अच्छा कहा, अगर आखिर में याद आ जाए कि मैं जाकर श्री कृष्ण जैसा बनूं तो कमाल हो जाए, वैसा ही बन जाएंगे। क्योंकि अंतिम क्लोजिंग जो है ना, अब हम तो क्लोजिंग करेंगे पूरे कल्प की, हर जन्म में भी क्लोजिंग होती है, लेकिन अब तो क्लोजिंग होगी पूरे कल्प की, तो इसको बहुत सुंदर ढंग से क्लोजिंग करनी है हमें, ताकि हमारी ओपनिंग, हमारी शुरुआत अति ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर हो जाए। पसंद है? ये छोटी सी प्लानिंग है, ये मैंने आपको कुछ बातें सुनाई, इसको अपनी दिनचर्या में सेट कर लो। जॉब वाले जो हैं वो भी सेट करें इसको कि हम इस टाइम ये अभ्यास करेंगे, इस टाइम ये अभ्यास करेंगे। एक व्यक्ति मेरे पास आया कल ही, मैं लेक्चरर हूँ, गांव में रहता हूँ, शहर में पढ़ाने जाता हूँ, मेरी दिनचर्या बहुत बिजी, योग का टाइम नहीं मिलता, मैं गीता पाठशाला भी चलाता हूँ, कुमार है। मैंने पूछा गांव से शहर में आने में बाइक पे कितना समय लगता? एक घंटा। एक घंटा आने में, एक घंटा जाने में, दो घंटा। मैंने पूछा दो घंटे फ्री नहीं हो तुम? तब उसको होश आई कि बात तो ठीक है। मैंने उसको तैयार किया, एंजॉय करो ना अपने ड्राइविंग को, एक घंटा, जल्दीबाजी कुछ नहीं, एक घंटा पांच मिनट लगा दो, पांच मिनट पहले चलो, आनंद लो यात्रा का और अभ्यास करो। मैं आत्मा यहां बैठी हूं, ये शरीर को भी चला रही हूं, बाइक को भी चला रही हूं, मैं लाइट हाउस माइट हाउस फरिश्ता हूं, कभी बाबा की किरणें आ रही हैं, कभी सामने बहुत सारी आत्माएं दिख रही हैं, क्यों ना हम सुंदर प्लान बनाएं, तो हमारे पास टाइम ही टाइम। क्यों हम टाइम नहीं है, टाइम हो इसकी इंतजार करें, और जो इंतजार कर रहे टाइम हो वो इंतजार ही करते रहेंगे पूरा जीवन। इसलिए इंतजार की जरूरत नहीं, कर्म में इन प्रैक्टिसेस को जोड़ देंगे। अब ये सब को खुद करना है। खाना बनाने का समय माताओं के पास फ्री है, मन को तैयार करो, मैं फ्री हूं तीन घंटे रोज। सोच लो सभी फ्री हैं या नहीं, बाबा से बात करो, अब मुझे आपके लिए भोजन बनाना, अपने साजन के लिए भोजन बनाऊंगी, प्यार भर दो उसमें, आह्वान कर लो आ जाओ तुम भी, और अभ्यास करते हुए बनाओ, देखो तीन घंटे फ्री हैं आपके पास, और ये तीन घंटे कम समय नहीं है, आपके जीवन में चमत्कार कर सकता है। मेरे कहने से एक हफ्ता करके देखो, फिर न अच्छा लगे छोड़ देना, छूटेगा तो नहीं आपसे अगर एक हफ्ता कर लें आप। बनाएंगे ऐसा प्लान सब, कोई नहीं कह सकता हम बहुत बिजी हैं। दिनचर्या को सेट करना, ये नहीं रात को 12 बजे सो रहे हैं आके, बिजनेस वालों के कामकाज ऐसे रहते हैं, होता है, पर मैनेज करना अपनी दिनचर्या को अपने हाथ में। ऐसे बाबा के बच्चे मैंने देखे, बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन, 8 बजे सब फिनिश, अब खाना खा के ये टाइम हमारा है 10:30 तक, क्योंकि वो कमाई और ये कमाई। कहने की बात नहीं कि वो विनाशी है, चलो वो भी यूजफुल है, मैं नहीं कहता वो कमाई बेकार है, नहीं करो, उसकी भी जरूरत है, पर उस कमाई की भी सफलता इस पर है कि ये कमाई भी हो। पसंद है? तो पुण्यों का खाता बढ़ाते चलेंगे और मस्त रहेंगे खूब। मुक्त करना अपने हाथ में। अब हम एक प्रैक्टिस करेंगे जो आपको सीख लेनी है, और उसके साथ ही फिर योग चलेगा ना, आप योग करेंगे, मैं तो आपसे विदाई लूंगा, और वो प्रैक्टिस है हम अपने को फील करेंगे सूक्ष्म लोक में। कुछ ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं कि फरिश्ता बन के जाएं, कैसे जाएं, हमसे तो फरिश्ता बना नहीं जाता। जैसे मैं आपको कहूं आप यहां बैठे हैं, एक सेकंड में बाबा के रूम में जाकर बैठो। बैठेंगे या नहीं? बस यही है, एक सेकंड में मैं आकाश के ऊपर सूक्ष्म लोक में हूं, सामने देखेंगे बाप दादा को और बाबा से कुछ प्रैक्टिस करेंगे। बहुत क्लियर देखेंगे, बाबा को बहुत क्लियर दिखेगा बाप दादा। ब्रह्मा बाबा तो दिखेगा ना, उसके अंग अंग से किरणें फैलती हैं, वहां बहुत डिवाइन स्वरूप है वो, तेजस्वी फरिश्ता। रेड लाइट करें भाई, इसमें 10 मिनट लगेंगे और अगर आप रोज एक बार ये कर लें तो आनंद ही आनंद। चले एक सेकंड में मैं आकाश के ऊपर सूक्ष्म लोक में, बिल्कुल अपने में मग्न होके करेंगे। ये सूक्ष्म लोक है, चारों ओर सफेद प्रकाश, परमानंद के वाइब्रेशंस, सामने देखें बाप दादा खड़े हैं, अंग अंग से रंग बिरंगी किरणें फैल रही हैं, मस्तक में ज्ञान सूर्य चमक रहे हैं, बाबा दृष्टि दे रहे हैं, बाबा ने अपना वरदानी हाथ मेरे सिर पर रख दिया, उनके हाथ से शक्तियों की किरणें मुझ में समाने लगी, मस्तक पर तिलक लगाया और वरदान दिए, बच्चे श्रेष्ठ योगी भव, सफलता मूर्त भव, निर्विघ्न भव, दृष्टि दे रहे हैं और याद दिलाया, बच्चे तुम साधारण नहीं हो, मेरे द्वारा चुनी हुई इस सृष्टि की महान आत्मा हो, मैंने तुम्हें अपनी सारी शक्तियां दे दी हैं, तुम ईश्वरीय शक्तियों से मास्टर सर्वशक्तिवान हो, मैंने तुम्हें वरदान दे दिया है, तुम विघ्न विनाशक हो, आगे चलकर तुम्हें सारे संसार के विघ्नों को हरना है, तुम कल कल के विजयी रतन हो, तुमने इस माया को बारंबार जीता है, तुम तो इतनी महान आत्मा हो कि तुम्हारी माला फेरते फेरते भी भक्त समस्याओं से मुक्त हो जाते हैं, तुम इस धरा पर मास्टर ज्ञान सूर्य हो, तुम्हारी किरणों से माया के कीटाणु नष्ट हो रहे हैं, तुम इस धरा के श्रृंगार हो, जहान के नूर हो, पवित्रता की देवी हो, पवित्रता के फरिश्ते हो, इस संपूर्ण प्रकृति के मालिक हो, ये प्रकृति तुम्हारे पवित्र वाइब्रेशंस की वैसे ही इंतजार करती है जैसे एक प्यासा मनुष्य पानी का। तुम वही हो जिनकी मंदिरों में पूजा हो रही है, तुम सभी आत्माओं के पूर्वज भी हो, उद्धार करता हो। बाबा दृष्टि दे रहे हैं। अब हम बाबा को सच्चे मन से शुक्रिया करेंगे। हे ज्ञान सागर, आपने आकर हमें तीसरा नेत्र प्रदान किया। हमारे चित्त के अंधकार को दूर किया। हमारी जन्म जन्म की सत्य की खोज समाप्त कर दी। हमें त्रिकाल दर्शी बना दिया। आप हमारी जीवन नैया की खिवैया बन गए। हे खुदा दोस्त, आपने आकर हमें नजर से निहाल किया। जीवन की यात्रा में हम अकेले थे, आप हमारे साथी बन गए। हे परम सद्गुरु, रोज सवेरे शक्तियों और वरदानों से आप हमारी पालना करते हो। आपको बारंबार शुक्रिया, कोटि कोटि बार शुक्रिया। बाबा मुस्कुरा रहे हैं और उन्होंने हमें गले से लगा लिया है। उनका प्यार भरा हाथ हमारे सिर पर और हम वापिस।
जैसे अभी हमने बाबा का भी शुक्रिया किया, वैसे ही भाई सब का भी कोटि कोटि धन्यवाद, जिन्होंने हमें अनुभव करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए बहुत सारे नुस्खे तरीके विधियां सुना दी। अब हमारा काम है अभ्यास करें और आगे बढ़ें। अब हम योग करेंगे और फिर 7 तब तक हम योग करेंगे।